أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون قرآن کریم کی تذکیر کے رنگ بھی نرالے ہیں انوکھے اور بہت پیارے اور کوئی ایک پہلو بھی انسانی فطرت کا ایسا نہیں جس کی طرف توجہ دلا کر انسان کی اصلاح ممکن ہو اور قرآن کریم نے اس کی طرف توجہ نہ دلائی ہو. بہت باریک اور لطیف نقطے فطرت انسانی کے اٹھاتا ہے, ان کی طرف انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے, انسان کو اپنی حقیقت اور کمائیگی سے آگاہ کرتا ہے, اس کی حیثیت یاد کراتا ہے, اور پھر مایوسی کی بجائے امید کی نئی کھڑکیاں کھول دیتا ہے اس کے لیے. یعنی انسان جب اپنی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہو کر مٹی ہو جاتا ہے تو پھر اسے اٹھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم تمہیں مایوس کرنے کے لیے, ناکام اور نامراد بنانے کے لیے یہ باتیں نہیں بتا رہے, بلکہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد, سچائی پر قائم کرنے کے بعد ابدی نجات کی راہ دکھانے کے لیے یہ باتیں بتا رہے ہیں. کن باتوں سے بچنا ہے یہ تمہیں بتاتے ہیں اور کس طرح بچنا ہے اور ہمیشہ کی فلاح کیسے پانی ہے یہ راز تمہیں بتا رہے ہیں. یہ ہے قرآن کریم کی تذکیر کا انداز جو مختلف مواقع پر اختیار کیا گیا, لیکن اس کی بنیادی صفات یہی رہتی ہیں. یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ المعارج سے لی گئی ہیں. 20 ता 29 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। इनमें पहली दो आयात में तो यूं मालूम होता है जैसे दिल दहलाने वाली बात की गई है, यूं महसूस होता है जैसे इंसान को उसकी हकीकत बताकर बताया गया है कि तुम तो किसी काम की चीज़ नहीं, तुम्हारी तो फितरत के अंदर बाज़ कजियाँ मौजूद हैं, तुम्हारी तख्लीक और बनावट में बाज़ कमज़ोरियाँ हैं, और उनके बाद तुम बड़े बड़े बोल बोलो और अपनी ज़ात पर बिना करते हुए किसी तरक्की के ख्वाब देखो, तो ये महज झूठ है। फरमाया इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, इंसान तो पैदा ही ऐसी हालत में किया गया है कि वो बेसब्रा भी है, थुड़ दिला है और कम हौसला है, यानी उसकी तख्लीक ही ऐसी है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, और उसके थुड़दिला होने, उसके कम हौसला होने और उसके बेसब्रे होने की दलील ये है कि इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब उसे शर पहुंचता है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तो बड़ा जज़ा फज़ा करता है, खूब शोर डालता है और बवेला करता है और मायूसी का शिकार हो जाता है। यूं महसूस करता है जैसे इस अंधेरे से मैं कभी निकल ही नहीं सकूंगा, और बेइंतहा बेकरारी का इजहार करता है। वाइज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब उसको भलाई पहुंचती है तो वो कंजूस बन जाता है और दूसरों तक अपनी भलाई को पहुंचाने का ख्याल ही दिल में नहीं लाता और खुदगर्जी दिखाता है। ये दो सिफात जो इंसानी फितरत की बयान की गईं, इनमें काबिले तवज्जो बात यह है कि शर के नतीजे में जज़ुआ के बाद खैर के नतीजे में मनुआ की सिफत क्यों रखी गई, यानी ये क्यों फरमाया गया कि जब उसे शर पहुंचता है तो बेचैन और बेकरार और वावेला करने वाला बन जाता है। उसके बाद बज़ाहिर ये होना चाहिए था कि जब उसको खैर पहुंचती है तो फिर वो बड़े तस्कीन पा लेता है और अपने आप को अमन में समझता है और समझता है कि अब आइंदा मुझे कोई शर पहुंचेगा ही नहीं। एक और मौके पर कुरान करीम ने यह तर्ज भी इख्तियार फरमाई है, लेकिन यहां अमदन इस तर्ज को बदल कर एक और रंग में बात की गई है। खैर के साथ मनुआ का जिक्र क्यों किया गया? मनुआ का मतलब है अपनी खैर दूसरों तक पहुंचाने का ख्याल तरक कर देता है और खसीस हो जाता है, ये पसंद नहीं करता कि उसकी भलाई में दूसरे शरीक हो जाएं। वजह यह है कि उसकी पहली हालत में जो कैफियत बयान फरमाई गई उसकी जिम्मेदारी इस दूसरी आयत ने उसकी ज़ात पर डाल दी है, यानी एक ऐसा इंसान जिसको दुख पहुंचता हो और वो दुख का एहसास भी कर लेता हो और जानता हो कि दुख क्या होता है, जब वो उस दुख से निकले तो ये नतीजा होना चाहिए कि वो दूसरों के दुख दूर करे, नतीजा तो ये निकलना चाहिए कि वो लोगों के साथ अपने सुख बांटे और जब भी कहीं दुख देखे वो बेकरार हो जाए, लेकिन ये नहीं होता, बल्कि वो बावजूद इसके कि दुखों में साहिब तजर्बा हो चुका होता है, बावजूद इसके कि जानता है कि मुसीबत क्या होती है, फिर जब भी मुसीबत से निकलता है खुदगर्ज हो जाता है और दूसरों की परवाह नहीं करता। और ये कैफियत कुरान करीम फरमाता है कि एक फितरी कैफियत है, यानी जानवर इसी तरह पैदा किए गए हैं, हर किस्म के वो यही हरकतें करते हैं, और इंसान भी जो मजहब से लाबलद हो, जिसकी तादीब मजहब ने ना की हो, वो उस आम फितरत पर अगर उसको पाओगे तो इसी हालत में देखोगे। तो दुनिया की जितनी भी लामजहब कौमें हैं ये उनकी कैफियत बयान हुई है, क्योंकि खुदा ने उनकी तादीब नहीं की, उनकी किसी मजहब ने तहजीब नहीं की, इसलिए वो बगैर इलाही तालीम के जब आम फितरी हालत में पाई जाएंगी तो हैवानात के ज़्यादा करीब होंगी, क्योंकि ये हैवानी फितरत है जिसका बयान किया गया है। अपने दुख के वक्त तो खूब शोर मचाएंगी और कहेंगी कि ये हम कौन हो, यानी कौन होता है दुनिया में हमें मुसीबत में डालने वाला, यानी ऐसी अनानियत और तकब्बुर और नफ्सा नफ्सी आप उनमें देखेंगे कि बे इंतहा बेकरार हो जाते हैं और दुख की निस्बत से ज्यादा मायूसी महसूस करते हैं, और जब भलाई आती है तो भूल ही जाते हैं बनी नौ इंसान को, ये ख्याल भी दिल में नहीं आता कि और भी लोग बेचारे मुसीबत में मुब्तला हैं, क्यों ना मैं उनकी मुसीबतें भी दूर करूं। चूंकि ये फितरत के एक एक ऐसी फितरत का इजहार किया गया है इन आयात में जो इंसान को की तखलीक में वदियत है, तो इससे बज़ाहिर इंसान का दिमाग मायूसी की तरफ मुंतकिल हो जाता है। यहां पहुंचकर अल्लाह ताला उसको संभालता है, उसे हाथ पकड़ाता है, दस्ते नुसरत अता करता है और फरमाता है कि नहीं, कोई मायूसी का मुकाम नहीं है। इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीन, नमाज पढ़ने वाले इबादत करने वाले मुस्तस्ना हैं, उनकी फितरतों में तब्दीलियां पैदा की जाती हैं, उनको नए रंग अता होते हैं और वो इन बुराइयों में मुबतला नहीं होते। जो सच्ची नमाजें पढ़ते हैं वो जब दुख महसूस करते हैं तो दुख उन पर गालिब नहीं आता, वो जजा फजा नहीं करते, उनमें तुम सब्र की बेमिसाल सिफात पाओगे। और जब वो खैर पाते हैं तो ये नहीं समझते कि हमारा हक था, हमें मिला है, गोया हम खैर ही के लिए पैदा किए गए थे। उस वक्त उनको ख्याल आता है उन भाइयों का, जिन भाइयों के दुख में से थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने भी पाया था, अपने उन भाइयों का जो बहुत सी भलाइयों से महरूम हैं, जो कई किस्म की मुसीबतों में मुबतला हैं। तो वो फी अमवालहिम हक्कुम मालूम, यानी मालूम यह होता है इस आयत से, और भी इसकी तफासीर हैं लेकिन एक ये भी मालूम होता है कि हक मालूम मुकर्रर कर बैठते हैं वो, यानी मालूम होता है जब मुसीबत उन पर पड़ती है तो उस वक्त याजम कर चुके होते हैं कि आइंदा हम अपने गैर दूसरे भाइयों के लिए खैर का इंतजाम करेंगे और हमें जब खुदा खैर अता फरमाएगा तो हम एक मुकर्रर कर लेंगे हक के, इतना जरूर अपने भाइयों को अता करना है। लिसाइल वल महरूम, और इतना अजीम शान सबक हासिल करते हैं वो मुसीबतों और दुखों से कि वो ये भी फैसला कर चुके होते हैं उन औकात में कि हम अपनी खैर पहुंचाएंगे सिर्फ मांगने वाले को नहीं बल्कि महरूम को भी, जो है तो महरूम लेकिन यानी दुनिया के लिहाज से सिर्फ महरूम नहीं बल्कि इस बात से भी महरूम है कि सवाल करे, उसमें इस्तेतात नहीं है, उसकी फितरत में खुदा ताला ने इतनी गैरत रखी है, इतनी हया रख दी है कि वो सवाल करने से भी महरूम रह जाता है। तो ये भी सोचते हैं कि इन लोगों तक भी हम पहुंचेंगे। ये फल है इबादत का, लेकिन साथ एक छोटी सी शर्त लगा दी, फरमाया फल उस इबादत का है जिस इबादत को दवाम हासिल हो। अल्लज़ीनहुम अला सलातिहिम दाइमून, ये उन लोगों को नेमत अता होती है, ये गैर मामूली शान, ये अजीम शान सिफात हसना उन लोगों के हिस्से में आती हैं जिनकी इबादत में दवाम होता है। आर्जी इबादतें करके अल्लाह से छुट्टी नहीं कर जाते, मुस्तकिलन खुदा के दरबार में हाजिर होने वाले लोग हैं ये, और दवाम ही दरअसल इस बात की जमानत है कि ये दो सिफात पहली दो सिफात के बरक्स उनको आता हूं, यानी जब उनको शर मिले तो वो मायूस ना हों और जजा फजा ना करें और सब्र के साथ उस शर पर भी कायम रहें, और जब उनको खैर मिले तो अपने तक महदूद ना रखें बल्कि गैरों तक पहुंचाएं। ये दो सिफात हसना कुरान करीम की रूह से इबादत करने वालों के हिस्से में आती हैं, लेकिन उन इबादत करने वालों के हिस्से में जिनके जो अपनी इबादतों को दवाम बख्शते हैं। यह है खुलासा इन आयात के मजमून का। अभी हमने एक नहायत ही बाबरकत रमज़ान की लज्जत पाई, और वो जो पहले इबादत नहीं भी किया करते थे उनमें से भी बकसरत ऐसे थे जिन्होंने इबादत शुरू कर दी, वो जो पहले तनाव की जिंदगी बसर कर रहे थे उन्होंने महज लिल्ला खुद मुश्किलात बर्दाश्त की और देखा कि मुश्किल होती क्या है, मुसीबत किसको कहते हैं, लेकिन ये मुसीबत तो ही थी, महज लिल्ला बर्दाश्त की गई थी। चुनाचे ये सबसे बेहतर मौका था इंसानी नफ्स की तरबियत का, एक महीना मुसलसल उन पर यह कैफियत तारी रही कि हुम अला सलातहिम दायमून, और बड़ी तवज्जो से उन्होंने इन बातों पर दवाम इख्तियार किया, यानी एक महीने की हदूद के अंदर मैं कह रहा हूं, इस निस्बत से उनको दवाम मिला है, और एक महीने की इबादत एक अच्छी खासी मौसर इबादत होनी चाहिए। बाज़ बातें तो एक इबादत ही इंसानी जिंदगी का रंग बदल देती है, कुछ आइए कि एक महीना मुसलसल पांच वक्त इबादत की जाए, और फिर यह सख्ती का तजर्बा भी देखा। रमजान से वही कामयाबी के साथ निकले हैं जो कुरान करीम की इन आयात के मुताबिक उन दो मुकाबिल की सिफात के हामिल बन चुके हैं जो जजुआ और मनुआ के मुकाबले पर अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई या अता फरमाने का वादा किया था। बस अगर इंसान ने अपने नफ्स में यह जांचना हो, यह मुहासबा करना हो कि इस रमजान मुबारक से मैं क्या पाकर निकला हूं और क्या खोकर निकला हूं, तो यह आयत एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन पैमाना उसके सामने रखती है। अगर रमजान मुबारक के बाद उसकी इबादात को दवाम हासिल हो गया है, ऐसा दवाम जो एक महीने की हदें फलांग कर भी आगे जारी रहता है, अगर रमजान मुबारक के बाद उसको दुखों के एहसास में सब्र करने का सलीका आ गया है, अगर कोई दुख उसको मायूस नहीं कर सकता, अगर रमजान मुबारक के बाद वो पहले से ज्यादा बनी नौ इंसान का हमदर्द बन चुका है, तो उसे मुबारक हो कि कुरान करीम की ये आयात उसे हमेशगी की फलाह की खुशखबरी दे रही है। अगर इनसे आरी गुजरा है कोई रमजान से, तो अपना अपने नफ्स का मुहासबा करके खुद ही जायजा ले और आइंदा इसलाह की कोशिश करे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं अपने नफ्स का मुहासबा कि आपको हक नहीं कि आप दूसरों के मुतल्लिक ये कहना शुरू करें कि तुम इस रमजान से गुजरे हो फिर भी वहीं के वहीं रहे। इससे आपको भी नुकसान पहुंचेगा और उसको भी नुकसान पहुंचेगा। आपके अंदर अनानियत और तकब्बुर पैदा हो जाएगा और वो समझेगा कि मुझे ताने दे रहा है, वो पहले से भी ज्यादा बुरे हाल में चला जाएगा। इसलिए ये नहीं है नसीहत का तरीका। इस वक्त इस मंजिल पर तो हर शख्स को खुद अपने नफ्स में डूबकर अपना जायजा लेना चाहिए। अब जहां तक इस बात का सवाल है कि ये नमाजें करती क्या हैं, कैसे ये दो सिफात पैदा कर देती हैं मोमिन के अंदर जो बज़ाहिर उसकी फितरत के खिलाफ हैं, लेकिन ये इर्तिकाई सिफात हैं, उन फितरत के अंदर जो खुदा ताला ने वदियत की हुई सिफात हैं, उनसे उनमें जड़ें जरूर पाई जाती हैं इन सिफात की, लेकिन एक नया और बेहतर फल पैदा हो जाता है, एक नया वजूद गोया के जहूर में आ जाता है। ये कैसे होता है? मुख्तसरन, गर्मी की वजह से मैं आज ख्याल था बिल्कुल मुख्तसर करूं खुतबे को, लेकिन फिर भी लंबी बात हो गई। कुरान करीम की आयात को समझाने के लिए इसलिए ज़्यादा तफसील से बात करनी पड़ती है कि बहुत से हम में ऐसे हैं जो कुलियतन नाबलद हैं, अरबी से भी कुरान करीम से भी तिलावत भी करते हैं तो समझ नहीं आती, इसलिए ऐसे कमज़ोरों का ख्याल करके ज़्यादा तफसील से बात करनी पड़ती है। बहरहाल, इबादत का क्या ताल्लुक है, वो कैसे इंसानी फितरत की कमज़ोरियों को दूर करके उनको खूबियों में बदलती है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये कोई दावा नहीं है बल्कि एक गहरी हकीकत और एक ठोस फलसफा है इसके अंदर। एक ऐसा शख्स जो खुदा की इबादत करता है, जब उस पर मुसीबत नाजिल होती है तो एक रास्ता उसके लिए खुला है दुआ के जरिए मुसीबत को हल करवाने का। वो ये जानते हुए भी कि मैं कुल्लियतन बेबस और कमजोर इंसान हूं, कोई मेरी पेश जा ही नहीं सकती, ये जानते हुए भी कि यह मामला इतना हद से गुजर चुका है कि सारी दुनिया के डॉक्टर इस मर्ज को शफा नहीं बख्श सकते, सारी दुनिया के मसाइल हल करने वाले कोई हल तजवीज नहीं कर सकते मेरी मुसीबत का, इसका यह एहसास रखते हुए भी वो ये भी जानता है कि मेरा खुदा कादिर मुतलक है, वो दुआओं को सुनने वाला है, वो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है, वो किसी हालत में भी मायूस नहीं हो सकता। यानी ऐसा कामिल यकीन दुआ पर हो जिस कौम को कि एक ऐसी कादिर मुतलक हस्ती से मेरा राब्ता कायम कर रही है दुआ और इबादत, कि जो हर चीज पर कादिर है, हर मुश्किल को आसानी में बदल सकता है, हर दुख को सुख में तब्दील कर सकता है, ऐसा आदमी सवाय इसके कि पागल हो जाए वो मायूस नहीं हो सकता। और यहां पागलों की बात ही नहीं हो रही, आम इंसान जो इबादत का हक अदा कर रहा हो और इबादत के मफहूम को समझता हो, उसके लिए किसी वक्त भी कोई मायूसी की जगह नहीं। दूसरा इसका पहलू है जजा फजा करना। वो इसलिए उस हालत में नहीं पड़ता कि वो जान उस रब से ताल्लुक इबादत के जरिए उसको अल्लाह का प्यार अता कर देता है और अल्लाह की रजा पर राजी रहना भी सिखा देता है। गोया इबादत एक मुसीबत ज़दा मोमिन के लिए दोहरी रहमत का पैगाम लाती है। इबादत के वक्त जब वो खुदा से मांगता है तो इस शर्त के साथ तो नहीं मांगता कि मुझे दे नहीं तो मैं तुझसे रूठ जाऊंगा, ऐसी दुआ तो उसके मुंह पर वापस मारी जाएगी और कबूल नहीं होगी। वो तो ये अर्ज करता है कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मुश्किलों को दूर फरमा, मेरे दुखों को आसानियों में बदल दे, मैं तुझसे इल्तजा करता हूं, तेरी इबादत करता हूं, लेकिन ये मेरी तरफ से कोई धमकी नहीं है, मेरी तरफ से कोई जोर नहीं है, तू मालिक है और मैं बंदा और गुलाम हूं, तू अता कर देगा तो मैं राजी रहूंगा, ना अता करेगा तब भी मैं राजी रहूंगा। ये एक तभी नतीजा है माकूल और साहिब फहम इंसान की दुआ का। वजह यह है कि इसके सिवा चारा ही कोई नहीं उसके लिए। एक मोमिन की दुआ करने वाली मोमिन की एक आम दुनिया में अगर मिसाल दी जाए तो ऐसी बनती है जैसे कहते हैं एक नौकर अपने मालिक से तनख्वाह का मुतालबा करना चाहता था लेकिन उसको हौसला नहीं पड़ता था बेचारे को। मालिक बड़ा जाबिर था और नौकर कहता था कि मैंने तनख्वाह का मुतालबा करना है, मैं क्या करूं, पेश नहीं जाती, डर बहुत लगता है। तो किसी ने उसको समझाया कि इस तरह नहीं मांगी जाएगी तनख्वाह, तुम मूछें बढ़ाओ और अपने अंदर जरा रोब दाब पैदा करो और फिर मूछों को तेल लगाकर और बल दे देकर ऊंचा करो और फिर मालिक से इस तरह मांगना जाकर कि बल देते हुए, ताव देते हुए मूछ को कहना कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ाते हैं कि नहीं, बढ़ाएं वरना। तो इतनी सी बात सुनकर ही मालिक डर जाएगा और तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देगा। चुनाचे उसने बेचारे ने मूछें पाली, तेल वेल मला उनको और बल दे देकर ऊंचा भी किया। जब वो मालिक के सामने पहुंचा और मूछ को ताव देते हुए उसने कहा कि हजूरे वाला, आप मेरी तनख्वाह बढ़ाते हैं कि नहीं, बढ़ाएं वरना। तो मालिक ने, जो उससे मूछ से ज्यादा ताकतवर था, उसने बड़े जलाल से उससे पूछा कि क्या बकवास कर रहे हो, बताओ वरना क्या करोगे। उसने कहा, वरना हजूर मैं मूछ नीची करूंगा और जिस तरह आप फरमाएंगे राजी रह जाऊंगा, इसके सिवा मेरे पेश किस बात, मेरी पेश ही नहीं जा सकती। उसने कहा, बहुत अच्छा, फिर कोई तनख्वाह नहीं बढ़ती। अल्लाह से मांगने वाले इस तरह तो मांग नहीं सकते और अगर मांगेंगे तो लाजमन मूछें नीची करनी पड़ेंगी। इसलिए माकूल आदमी जानता है कि जहां पेश ही नहीं जा सकती, कुछ चल ही नहीं सकती अपनी, वहां सलीके से क्यों ना बात करें। मूछ बढ़ाकर बात करने की क्या जरूरत है, पहले ही ये कहें कि ऐ अल्लाह हम तो आजिज बनते हैं, हमारी पेश ही कुछ नहीं जाती, कोई बस नहीं है, बिल्कुल बेहसियत और नाकारा लोग हैं, जो कुछ अता किया है तूने अता किया, ये भी अता कर दे तो तेरा एहसान है, नहीं अता करेगा तो हम राजी रहेंगे तेरी जात पर। हम उन लोगों में से नहीं है जो ना अता होने पर रूठ जाया करते हैं, रूठने की जगह भी तो कोई नहीं है, जाए तो जाएंगे कहां। हजरत मुस्लिम मौत कहते हैं कि मैं तेरा दर छोड़कर जाऊं कहां, चैने दिल आराम जा पाऊं कहां। तो वो अर्ज करते हैं कि तेरा दर छोड़ने का तसव्वुर ही कोई नहीं कर सकते हम, और अगर छोड़ेंगे तो पहले हाल से भी बदतर हो जाएंगे, जो कुछ मैसर है ये भी नहीं रहेगा। इस कैफियत से जो दुआ कर रहा हो उसके लिए जजा फजा का कौन सा मौका रह जाता है। वो तो मांगते हुए खुद अपनी हैसियत को भी पहचान रहा होता है और अर्ज ये कर रहा होता है कि ऐ खुदा राजी बरजा मैंने हर हाल में रहना है। चुनाचे हजरत मुस्लिम मऊद ने ही इस मजमून को एक और शेर में भी बयान फरमाया है। अब कहते हैं कि हो फजल तेरा यारब या कोई इब्तिला हो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। मांगते तो यही रहेंगे हमेशा हम बंदे जो हुए मांगने वाले, कि अल्लाह इब्तिला दूर फरमा दे, इब्तिला दूर फरमा दे, फजल कर फजल कर। लेकिन खुदा गवाह है, तू गवाह है हमारे आका, कि जब अगर तूने फजल ना किया और यही फैसला किया कि इब्तिला रहेगा तो तब भी हम राजी रहेंगे। बस देखिए, इबादत ही है जो इस इंसानी फितरत की कमजोरी को खूबियों में तब्दील कर देती है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, मोमिन के लिए जज़ा फज़ा का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन साथ शर्त लगाई, इल्लल मुसल्लीन लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। फरमाया कि पुरानी बातें तो तुम्हारे उस मौके पर तुम्हारे काम नहीं आएंगी, ये तो एक मुस्तकिल हालत है इंसान की, क्योंकि इंसान के साथ मुसीबतें लगी रहती हैं। ऐसी हालत में ना तुम अपने आप को मुबतला कर देना कि तुम्हारी बातें पीछे रह चुकी हों और मुसीबतें तुम्हें आगे पकड़ लें। इबादतों पे दवाम इख्तियार कर जाओ ताकि किसी हालत में भी कोई मुसीबत अचानक ना तुम्हें पकड़ सके।
जब आए देखे कि एक इबादत गुजार बंदे पर आई हूं और इबादतें धक्के दे दें उस मुसीबतों को, उन मुसीबतों को, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगी। वो सबक मोमिन को ये मिला कि अगर तुम दवाम चाहते हो दुनिया में और अपने अमन और सुकून के लिए दवाम चाहते हो तो इबादत पर दवाम इख्तियार कर जाओ, और अगर तुम हवाइज आसमानिया से महफूज रहना चाहते हो और हवादिस से महफूज रहना चाहते हो, दुखों और मुसीबतों से महफूज रहना चाहते हो, तो इबादत पर की हिफाजत करो, इबादत तुम्हारे लिए मुहाफिज बन जाएगी। ये मजमून है जो कुरान करीम यहां बयान फरमा रहा है। और इबादत के बाद उसका तभी नतीजा ये निकाला, वल्लज़ीना फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, वो जो खुदा से मांग रहा हो अगर वो खुद दूसरों को ना देता हो तो मांगने का अहल ही नहीं रहता। जो ये खुदा से अर्ज करना चाहे कि ऐ खुदा तू बड़ा रहीम व करीम है, तुझे बहुत कुछ हासिल है, उसमें से मुझे खैरात डाल, और अपनी हालत यह हो कि जब दूसरों को जरूरत हो तो वह खैरात ना डालता हो, तो अल्लाह ताला तो उसकी दुआएं नहीं सुन सकता। और एक माकूल इंसान, एक साहिब फहम आदमी ऐसी दुआ कर ही नहीं सकता जब अपना हाल यह हो कि वह दूसरों के लिए कमजूस बन चुका हो, मांगने का हक ही नहीं रखता वो। बस ऐसे बंदे उलूल अलबाब होते हैं, वो दुआओं से पहले पूरी जहनी तैयारी कर चुके होते हैं। वो साथ ये भी अर्ज करते हैं कि ऐ खुदा जो कुछ तू हमें देगा हम आगे तेरे बंदों को भी पहुंचाएंगे, हम अकेले नहीं खाएंगे, सारे हम में से हिस्सा रसदी शरीक, हमारे साथ हिस्सा रसदी शरीक होंगे, इसलिए मेरी खातिर नहीं तो अपने दूसरे बंदों की खातिर ही अता कर, जरिया बना दे मुझे, मुझे भी लुत्फ आए कि मैं आगे लोगों को तकसीम कर रहा हूं। चुनाचे अंबिया की ये रूह होती है और ये फितरत होती है। तभी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को खुदा तआला ने फरमाया, नान ने आसमान से उतरता हुआ दिखाया और फरमाया कि ये तेरे लिए और तेरे साथ के दरवेशों के लिए, यानी ये नहीं कहा कि अपने साथ के दरवेशों को दो, फरमाया हम जानते हैं तेरी फितरत को, तू कोई फैज अपने लिए अकेला रख ही नहीं सकता, लाजमन जो नेमतें हम तुझे अदा करते हैं तुझे आगे बांटता है, तो हम पहले ही शामिल कर रहे हैं उन लोगों को कि ऐ मेरे बंदे ये तेरे लिए और तेरे साथ के दरवेशों के लिए है। तो ये सलीका भी इबादतें सिखाती हैं कि इंसान अपनी भलाइयों दूसरों में तकसीम करे और उस तकसीम में लज्जत पाए, दुख महसूस ना करे बल्कि लज्जत पाए। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये रमजान जिसने 30 दिन कम अज कम बाद लोगों को इबादतें सिखाई और जो पहले इबादत गुजार बंदे थे उनकी इबादतों में इजाफा किया, वो ये दायमी सबक पीछे छोड़ जाएगा हमारे लिए, हम यकीन करेंगे कि इबादत के बगैर हमारी कोई जिंदगी नहीं, इबादत के बगैर किसी मुसीबत के खिलाफ कोई जमानत नहीं है, इबादत के बगैर हम खुदा के वो बंदे नहीं बन सकते जो बनी नौ इंसान की भलाई के लिए पैदा किए गए हैं, और इबादत के बगैर हम खुदा की तरफ से अजाब, आने वाले अजाबों से मामून और महफूज नहीं रह सकते, आगे इन आयात में जिक्र किया गया। इस सबक को लेकर अपनी जिंदगी में अपनाएं, अपने अमाल में दाखिल करें और फिर देखें अल्लाह ताला कितने बे इंतहा फजल करने वाला खुदा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाह मिन शुरूर अन्फुसिना व मिन सैयाति अमालिना मन यहदिहिल्लाह फला मुदिल्ला लहु وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِبَادَ اللَّهِ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.